मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 30 मई 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आर्यन राज, आपका गांव है फतेहपुर, जिला वैशाली, बिहार, और शुभम त्यागी, आप मेरठ, उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के तहत मैं आपसे कौशल विकास के बारे में कुछ बातें करूंगा, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक बड़ी दुखद जो खबर है आपने रेडियो न्यूज में भी सुनी होगी, चैनल्स पर भी खबरें आ रही हैं और अखबारों में भी आप है, और वह कि एक जो डॉक्टर थी जिनका नाम पायल तड़वी, डॉक्टर पायल तड़वी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने का जो कारण है, जो अभी तक मालूम पड़ रहा है, वो ये कि उनके साथ की जो दूसरी डॉक्टर्स थी, उनकी सहेलियां ही आप कह लीजिए, वो लगातार उन पर जाति सूचक टिप्पणियां किया करती थी। इसका मतलब यह हुआ सीधे तौर पर कि जो उनकी दो तीन जो डॉक्टर सहेलियां थी, सहेलियां न भी कहें हम उम्र थी कह लीजिए कि वो उच्च जाति की रही होंगी हैं, और जो डॉक्टर पायल तड़वी हैं वो आपके अनुसूचित जनजाति से शायद संबंध रखती हैं। दोस्तों, यह आपके लिए क्यों एक जरूरी घटना है? जरूरी घटना इस मायने में है कि आपको अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको अपने समाज का जो चरित्र है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो ताकतें हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, उनसे आपका अच्छी तरह से परिचय हो। भारत के बारे में आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है शुरू से बहुत ही विभाजित समाज है। पहले तो कार्य के आधार पर वर्ण बनाए गए थे और पता लगा बाद में फिर जातियां और उपजातियां और उपजातियों की उपजातियां, इतनी सारी जातियां बन गई है। मतलब अब केवल चार ही वर्ण नहीं रह गए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली बात नहीं रह गई है। हर वर्ण में आपको पता नहीं कितनी जातियां, उपजातियां, फलाना 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 दिखाई देती रहेंगी। और यही एक कारण रहा कि भारत का समाज चूंकि बहुत सारे खंडों में विभाजित हो चुका था, और इसलिए जब बाहरी शक्तियां भारत पर आई तो यह विभाजित समाज उनको संगठित होकर के प्रतिरोध नहीं कर सका। खैर, आजादी के बाद आप पाते हैं कि हमारे संविधान में इसे बकायदे समाप्त किया गया है, मूल अधिकारों के तरह समानता का अधिकार दिया गया है, कानून बनाए गए हैं इसके विरोध में। लेकिन ये जो जाति का जहर है वो यूं कह लीजिए कि कुछ भारतीय नसों में इतना ज्यादा मिला घुला है कि इस 70 साल के बाद भी आज हम इससे मुक्त पूरी तरह से नहीं हो पा रहे। लेकिन केवल ऐसा नहीं है, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव पक्ष भी है। दोस्तों, मैं तो 1970 की स्मृतियों के साथ जी रहा हूं। उस समय जाति के जितने दंश गहरे हुआ करते थे, जाति का जितना अधिक जहर उस समय लोगों के दिमाग में था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब वह काफी कम हुआ है। काफी क्या मतलब, बहुत कम हो गया है। बड़े नगरों में तो लगभग रह ही नहीं गया। मैं समाज की बात कर रहा हूं। देखिए, यहां जो हम घटना है वो एक मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में देख रहे हैं, मतलब वो एक संस्थान है। लेकिन जहां तक आप ओपन सोसाइटी में पाएंगे, महानगरों में, यहां तक कि नगरों में भी जो सेकेंड टायर जो सिटीज है उनमें भी अब ये चीजें ज्यादा नहीं रह गई है। और इसका कारण यह है कि जब समाज विकास के चरण पर आगे बढ़ता है तो उसमें ढेर सारे परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर आते रहते हैं। लेकिन यह कहने में भी हमें कोई संकोच नहीं रहना चाहिए, या कह लीजिए स्वीकार करने में हिचक नहीं दिखानी चाहिए कि हमारे अभी भी कुछ जो ऐसी जातियां हैं, या कह लीजिए कि हमारे गांव के कुछ ऐसे अंचल अभी भी, अंचलों में कुछ ऐसे गांव अभी भी हैं जहां अभी भी जाति द्वेष बहुत जबरदस्त रूप से मौजूद है। और परिवारों की जो परवरिश भी होती है उस दौरान वो जाति का जो इंजेक्शन है जाने अनजाने उन बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि इस बार के चुनाव इस बात को थोड़ा सा प्रमाणित कर रहे हैं कि राजनीति में आप जाति के आधार पर जीत हासिल नहीं कर सकते, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जो नई नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, आपको चाहिए कि आप इन नई घटनाओं के माध्यम से अपने थॉट्स को लगातार अपडेट करते चलें। मित्रों, हमारी लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हो गए हैं, और उन चुनावों के आधार पर एक संस्था है, जिससे पहले भी मैंने शायद कभी आप लोगों से चर्चा की थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR के नाम से ये बहुत पॉपुलर है। और जब भी इसके कुछ डेटा आपको मिले, इसके सर्वे मिले, तो आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर लें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसने अभी एक डेटा रिलीज किए हैं और वो बड़े चिंता पैदा करने वाले डेटा हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा में जितने सांसद चुन करके आए हैं, उसमें से 43% ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। दोस्तों, 43% मतलब आधे से अब थोड़ा सा ही कम रह गया है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि लोकसभा में जो अभी सांसद आए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा 116 यानी कि लगभग 39% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के 29 है, जनता दल यूनाइटेड के 13 हैं, द्रमुक के 10 हैं और तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद हैं जिनकी छवि दागदार है। और दागदार भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि आपराधिक मामलों में है, और इनमें जो 29% मामले हैं वो हत्या, हत्या की कोशिश और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध वाले हैं। और इसमें इन्होंने ये भी दिया है कि 2009 से अगर हम अभी 2019 की तुलना करें तो सांसदों, आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों का जो प्रतिशत बढ़ा है वो 109% है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, और ये डेटा आपको नोट कर लेने चाहिए कि हम लगातार ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से अपनी राजनीति को अपराधियों से मुक्त करें। और हम देख रहे हैं कि लगातार ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो खासकर चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं और हमें इस बात के प्रति थोड़ी सी चिंता जाहिर करनी चाहिए और हमें जानकारी भी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी डेटा के रूप में है तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी ज्यादा विश्वसनीय होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो आपके जनरल स्टडीज 4th का पेपर होता है एथिक्स का, उसमें पिछले साल या पिछले से पिछले साल की बात होगी, एक प्रश्न इस तरह का आया था कि जो युवा वर्ग है, जो एक साफ सुथरा वर्ग है, वो राजनीति में आना नहीं चाहता है राजनीति की वर्तमान स्थितियों को देख करके, तो वो राजनीति में आए इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, क्या कोशिशें करेंगे, इस तरह का एक प्रश्न पूछा भी गया था। दोस्तों, आज के करंट कंटेंट के तहत नगर वन निगम की अवधारणा पर आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया हिंदी में, ये हिंदू अखबार में छपा था, प्लीज इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके पर्यावरण से संबंधित प्रश्न की मांग को पूरा करता है। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। दरअसल कौशल विकास का जो मैंने विषय लिया है उसका कारण सिर्फ इतना है कि आज बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल छपा है, कौशल विकास से ही बनेगी युवाओं की बात, और ये आपके जो आपका जो जनरल स्टडीज का 3rd पेपर है ना, जो जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और सच पूछिए तो हम जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं या अपने इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करते हैं, देश के आर्थिक विकास की बात करते हैं, एक फास्ट GDP ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें कौशल विकास का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब हम इस तरह के टॉपिक पर तैयारी करने की सोचते हैं मित्रों, तो देखिए आप इसकी तैयारी करेंगे कैसे, मैं इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। कौशल विकास एक टॉपिक है, राइट? ये टॉपिक बकायदे आपको सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले किताबों में टॉपिक के रूप में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां से आप कौशल विकास के जो बेसिक्स हैं उन सब चीजों को ले लेंगे। उदाहरण के तौर पर कि भारत में क्यों अभी तक दक्ष लोग ज्यादा नहीं हुए हैं, इनका परसेंटेज क्या है, तो वहां आप पढ़ेंगे कि हमारे यहां अभी भी केवल 5% मैक्सिमम 5% लोग स्किल्ड हैं और वो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। रिमेनिंग जो 95% इवन कि 96% जो हमारा वर्क फोर्स है वो अनस्किल्ड है, उनके पास कोई खास दक्षता नहीं है लेकिन वो सब काम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। तो जब अनस्किल्ड व्यक्ति काम करेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम डेटा में देखें तो भारत का एक व्यक्ति अगर एक इकाई का उत्पादन करता है तो चाइना का वही व्यक्ति 1.6 इकाई का उत्पादन करता है। इसका मतलब है कि जो चाइना के व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वो भारत के तुलना में 1.6 ज्यादा है, यानी कि 1.5 गुने से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच करके देखिए कि अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है आर्थिक क्षेत्र में तो वो कैसे संभव होगा, क्योंकि वो जो चीज उत्पादित करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि उनके पास स्किल्ड लोग हैं। तो भारत भी लगातार अब इस कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से हम अपने लोगों को की दक्षता का विकास करें, जिसे आप कौशल विकास योजना के रूप में जानते हैं, और इसके लिए बाकायदे हमारे यहां एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है जिसका नाम है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। भारत ने जो मेक इन इंडिया योजना शुरू की है, जो एक मिशन की शुरुआत की गई है, डेफिनेटली उस मिशन में हम तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम अपने यहां कौशल विकास नहीं करेंगे। और इसके लिए भारत ने खासकर अब जो मॉडल अपनाया है वो मॉडल है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि उसमें सरकार भी अपना काम करेगी और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी काम करेंगे, दोनों मिलकर के काम करेंगे और इस तरह से अपने देश के लोगों को दक्षता का, देश के लोगों की दक्षता का विकास करेंगे। तो अब देखिए कि मैं आपके प्रिपरेशन के तरीके पर बात कर रहा था, तो एक स्थायी जानकारी आपको किताब में मिल जाएगी, लेकिन इसे अब लगातार आप अपडेट कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर इस आर्टिकल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक दो नई बातें मिलेंगी जो किताबों में आपको पढ़ने को शायद ही मिले। इसमें एक जो बहुत अच्छी बात कही गई है कि ठीक है, कौशल विकास तो आप कीजिए ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको उन्हें शिक्षित करने पर भी विचार करना होगा, यानी कि शिक्षा देने पर भी विचार करना होगा। उसका रीजन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये कहा कि जो तकनीक है वो रोजाना बदल रही है, जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उनकी मांग भी उस तकनीक के हिसाब से बदल रही है। हमने एक का कौशल विकास तो कर दिया, वो काम कर रहा है, पता लगा कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद जो हमने उसे कौशल सिखाया था वो पुराना पड़ चुका है, नई तकनीक आ गई है तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन यदि उसके पास शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, तो वो लगातार अपने को तकनीक के हिसाब से अपडेट करता चला जाएगा। तो अब ये बिल्कुल एक नया एंगल मुझे पहली बार पढ़ने को मिला है। तो अच्छे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की ये पहचान होती है कि जब भी उसे इस तरह के कोई नए विचार मिलते हैं, नए तथ्य मिलते हैं, तो वह उन्हें बकायदे उस टॉपिक पे की पृष्ठ पर नोट कर लेता है। ये तैयारी का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एक मॉडल हो सकता है। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: शिव ओझा कानपुर उत्तर प्रदेश से, सुमन भाबुआ बिहार से, रजनीश सिंह आईआईटी खड़गपुर से, और सत्येंद्र मौर्य। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।